रात्रि क्लास चल रहा था 16567। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी मुरली की, शुरुआत में बात थी बच्चे बहुत हार खाते हैं माया से। माया से हार तो नहीं खाना चाहिए, ऐसे सब शक्तिवान उस्ताद मिले तो उस्ताद की श्रीमत पर चल, अपना वर्षा तो ले लेना चाहिए ना। देखो बाप डायरेक्ट कहते हैं क्या, मुकर्रर रथ से कहते हैं, परमानेंट रथ के द्वारा निराकार है ना। तो कहते हैं तुम बच्चों को फिर से बेहद का सुख का वर्षा देने आया हुआ, पहले भी दिया था, पहले कब दिया था है? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दिया था, लंबा चौड़ा यज्ञ के आदि में क्या वर्षा दिया था, नरक की दुनिया कौन सी थी, क्या स्वर्ग का वर्षा दिया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1947 में खून खराबे का युद्ध शुरू हो गया था। खून खराबे के बीच में, नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चे कराची में समंदर के किनारे बड़े आराम से बंगले में रहे पड़े थे। मुसलमान लोग कहते थे ये तो खुदाई खिदमतगार हैं। तो देखो पाकिस्तान में हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और तुम बच्चे आराम से रहे पड़े थे। अभी फिर बाप आया हुआ है, डायरेक्ट कहते हैं, ऐसे नहीं कोई टेम्पररी रथ के द्वारा कहते हैं। जिस तन में भी आता हूँ नाम क्या रखता हूँ, ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा जी तो पांच मुखो दिखाते, तो जरूर एक मुख डायरेक्ट हुआ, परमानेंट हुआ, बाकी मुख तो परमानेंट तो नहीं हुए ना। कभी उन मुखों के द्वारा बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, तो इनडायरेक्ट भी हुए ना। और फिर बाप के रूप में नहीं तो नहीं कहेंगे, बाप तो एक होता है या बाप भी अनेक हो सकते हैं, माताएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन बाप तो एक ही होता है, एक परिवार का एक ही बाप। बच्चे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा है परमानेंट रथ, उसके द्वारा डायरेक्ट कहते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से बेहद का सुख का वर्षा देने आया। हद का वर्षा तो दुनिया में मिलता है, उसमें सुख भी है तो दुख भी है। हद के देहधारी धर्म पिताएं आते हैं तो हद का सुख का वर्षा दे, बाप तो ऐसे सुख का वर्षा देते हैं जिसमें तुमको कोई दुख नहीं होता है। होता है नहीं होता है, वर्षा देने आया हुआ है, अभी दिया नहीं है, तुमको बाप की श्रीमत पर भी चलना है क्या? तब तक चलना है जब तक तुमको बेहद का वर्षा मिले, और टीचर की मत पर भी चलना है क्या? तुम्हारा बाप, तुम्हारा टीचर और तुम्हारा सदगुरु एक ही है या अलग अलग है? एक ही परमानेंट रथ में बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तो उस एक कीमत पर चलना है, बाप के बने हो, बाप पढ़ाए रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ाई पूरी होगी तो पिछाड़ी में तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। क्या? कहाँ ले जाऊंगा? हैं? शांति धाम की स्टेज में ले जाऊंगा। कौन कहते हैं? है? बाप कहते हैं, पिछाड़ी में साथ ले जाऊंगा। क्या पिछाड़ी कब होगी? जब पढ़ाई पूरी होती है। तो फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जब षष्ठी का पूरा शूटिंग का काल पूरा होता है तो पिछाड़ी हो जाती है। साथ ले जाऊंगा कहाँ ले जाऊंगा बताओ? जल्दी से एक शब्द में, कहाँ ले जाऊंगा? शांति धाम ले जाऊंगा। क्या? तुम्हारी आत्मा शांति धाम का अनुभव करेगी। ज्योति बिंदु आत्मा कहाँ अनुभव करेगी? मैं शांति धाम में बैठी हुई, अखंड ज्योति के बीच में बैठी हुई। बच्चे कहेंगे वहां क्यों ले जाएंगे इतनी दूर? बाप कहते हैं, अरे तुम खुद ही परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या? वो शांति की स्टेज तुम खुद ही नीचे ले आएंगे। ये कितनी सीधी बातें हैं बच्चों को अच्छी तरह से समझने की हैं। तो आत्मा शांत स्वरूप है तो कहां की वासी हुई? शांति धाम की वासी हुई ना। इस दुनिया में तो अभी घमासान है, इस दुनिया में शांति कैसे होगी? इस दुनिया की स्टेज से परे, इस दुनिया के मनन चिंतन मंथन से परे जब तुम आत्म की स्टेज में पहुंचते हो तो शांति धाम का अनुभव करते हो। बच्चों को अच्छी तरह से समझना है तो पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली जो आत्मा है वो ऐसे शरीर में रहे, ऐसे आराम से अनुभव करे जैसे कोई दुख का नाम निशान नहीं, अशांति का नाम निशान न रहे। तो कहेंगे पक्का पुरुषार्थी 100%। शरीर रूपी पुर में भी रहे और मुक्त भी हो जाए दुख दर्दों से, और फिर जीवन मुक्ति का भी अनुभव करे, जीवन भी रहे, जीवित रहे शरीर से और सुख शांति में रहे, दुख शांति महसूस न करे। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि पढ़ाई पूरी हो और बाप के साथ शांति धाम में चले। माया की मत पर यानी परमत पर, या माया कैसी है, आत्मा की मत देने वाली है, स्वधर्म की मत देने वाली है या परधर्मों की मत देने वाली है? परधर्म कब से आते हैं? परधर्म आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, जब दो दो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आना शुरू होते हैं। दो दो की इस दुनिया में मतें चलती हैं, तब वसुधैव कुटुंबकम थोड़े ही कहेंगे कि सारी वसुधा एक कुटुंब हो गई, तो द्वैतवाद हो गया। अलग अलग धर्म के परिवार स्थापन हो जाते हैं। तो परमत पर ना चलो, ये माया है पराये धर्म पिताओं की मत देने वाली, पराये धर्मों की धारणाएं सिखाने वाली। क्या धारणाएं? भौतिकवादी बनो, पंचभूतों को सत्य मानो। अरे पंचभूतों से बना हुआ शरीर ही विनाशी है, तो हम विनाशी को क्यों माने जब हमें अविनाशी बाप मिला हुआ है? वो अविनाशी बाप हमारी आत्मा का बाप है, स्व का बाप है, स्वधर्म में रहना सिखाता है। स्व माने ही आत्मा, आत्मा के धर्म में रहो। तुम आत्मा हो, आत्मा को पहचानो, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा मन बुद्धि और मन बुद्धि में भरे हुए जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनसे भरपूर है। ये स्वभाव संस्कार हर आत्मा ने इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में भरे हैं। जैसे जैसे भाव भरे हैं वैसा वैसा उसे पार्ट बनाना पड़ता है, और उन्हीं भाव स्वभाव संस्कारों के अनुसार मैं हर आत्मा के वर्ण का निश्चय कर देता हूँ, निश्चित कर देता हूँ। इसलिए गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सष्टम गुण कर्म स्वभाव से, मैंने चार वर्णों की रचना की है। किस अनुसार? गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। क्या ऐसे नहीं की है? तुमने जैसे स्वभाव धारण किए मेरे आने पर भी, मेरे ज्ञान सुनाने पर भी तुमने जैसे स्वभाव संस्कार धारण किए, वैसा ही तुमको वर्ण में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये स्वभाव तुम्हारी प्रकृति है। तो बताया स्वधर्म पर चलो, पर क्या है? पर है माया। माया सर्वशक्तिवान है, जैसे बाप सर्वशक्तिवान। बाप है ना, इवर प्योर है। और बाप की बेटी भी कैसी होती है? बच्चे नंबरवार पवित्रता की शक्ति लेकर पैदा होते हैं। जैसे बड़ा बच्चा होता है तो बड़े लंबे समय की प्योरिटी की पावर से माँ बाप से जन्म लेता है। बाद वाले बच्चे उतनी पावर से जन्म नहीं लेते हैं, तो नंबर वार हुए ना। लेकिन माया भी बड़े बेटी है क्या, ये माया जो है ना बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। शिव पुराण शास्त्र में भी देखना क्या, जो मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि सारी प्रजा 500-700 करोड़ का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, उसकी बड़ी बेटी है, तो वो सबको कंट्रोल में करके रखती है परिवार। बड़ी चालाक भी है क्या, देखती है कि इस परिवार में जो सब हैं वो तो कमजोर है परिवार के भांति, बड़ी पावरफुल तो माता है, जानती है मैं माता की बच्ची हूं, लेकिन माई बाप के मुकाबले बच्ची में प्योरिटी होती है या नहीं होती है, है? बच्ची में प्योरिटी होती है। बाप तो फिर भी माँ के संबंध में आकर के बड़ा बच्चा पैदा करता है, तो प्योरिटी के लंबी समय की पावर चली जाती है। और बाप के मुकाबले माँ तो ज्यादा पावर होती है क्या, ज्यादा पावर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी परिवार में माँ के अथॉरिटी बहुत होती है, माँ बहुत पावरफुल होती है बाप के अलावा। तो जो मां है उसका नाम है प्रकृति, क्या प्रकृष्ट कृति, मैं परम पुरुष हूं ना, तो परम पुरुष की प्रकृष्ट प्रति कृति है इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच में परम पुरुष, और माता है दो प्रकार की क्या, एक है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, आत्मिक भाव वाली, और दूसरी है नीची टाइप की, देहभान के स्वभाव वाली क्या। शरीर है ना, शरीर में पुरुष की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों से दो प्रकार की इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां, चैतन्य, और दूसरी कर्म इंद्रियां। तो ऊंची कौन सी है, ऊंची स्टेज वाली कौन सी है, ज्ञान इंद्रियां, जो ज्ञान को धारण करने की क्षमता रखती है। कौन से ज्ञान को, मनुष्यों के ज्ञान को तो धारण करती ही है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, जो ईश्वर सबसे ऊंचा है आत्माओं के बीच में, उस ज्ञान को पहले धारण करती है और पक्का पक्का धारण करती है, और जब धारण करती है तो धारण करने का प्रूफ क्या होता है कि ज्ञान धारण किया, कैसे पता चले किसने ज्ञान धारण किया है कि नहीं किया है, कैसे पता चले, है, धारणा से खुद धारणा अंदर अंदर कर ली तो कैसे पता चले, खुद धारण कर लिया दूसरों को क्या पता, दुनिया को कैसे पता चले है, संस्कारों से। ओहो, संस्कार भी अंदर की चीज है, मन बुद्धि के अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, दूसरों को कैसे पता चले है, बाहर आने कैसे बाहर आएंगे, मन बुद्धि में भरे हुए संस्कार कैसे बाहर आएंगे है, प्योरिटी की यूनिटी से यूनिटी कैसे बनेगी, अरे अंदर ही अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, अंदर ही अंदर धारणा भरी पड़ी है, है? तो दूसरों को धारण, दूसरों को धारण कर लेते, दूसरों को उठा के हम अपने अंदर धारण कर लें, दूसरों को धारण कराने से, हाँ दूसरों की सेवा करेंगे तब ही तो पता चलेगा क्या इसके अंदर ज्ञान है या नहीं है, ईश्वर का ज्ञान धारण किया है या नहीं किया है। तो वो परा प्रकृति जो है, श्रेष्ठ प्रकृति क्या करती है, है? वो आत्मा ऐसी आत्मा है, ऐसी रचना है परम पुरुष की, के वो जितना धारण कराती है दुनिया वालों को, क्या उतना और कोई धारण नहीं करा सकता, वो जितने अच्छे संस्कार धारण करती है उतने ही अच्छे संस्कार औरों को धारण भी करने की क्षमता रखती है, क्या तो वो संस्कार शक्ति है, कौन सी शक्ति, संस्कार धारण करने की शक्ति है, ब्रह्मा है स्थापनाकारी, शंकर है विनाशकारी, और विष्णु है, है प्रैक्टिकल धारण करने वाला, प्रैक्टिकल में संस्कार बनाने वाला, संस्कार परिवर्तन शक्ति है, क्या ये संस्कारों का परिवर्तन, जब तक कोई अपने संस्कारों को परिवर्तन न करे तो दूसरों में संस्कार नहीं भर सकता, शंकर जी है विष पाई अमृत पाई तो नहीं कहा गया, और चलो ज्ञान अमृत पी भी लेते हैं, शिव बाप उनको पिलाते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर तो नहीं पता चलता, बाहर से दुनिया क्या कहती है, विष पाई है या अमृत पाई है, हाँ अमृत पाई है, अमृत पीता है लेकिन दूसरों को तो अमृत पीने का अनुभव उनके द्वारा नहीं होता, किनके द्वारा होता है, वैष्णवी शक्ति विष्णुपद, जो वैष्णवी शक्ति है माता है उसके द्वारा पता चलता है, ये धारणा शक्ति है, क्या पवित्रता को भी धारण करने वाली है, लेकिन वो भी उसका भी एक दूसरा रूप है, ये हुई परा प्रकृति जिसे कहते हैं लक्ष्मी, क्या महागौरी, उसने काली मां का नाम निशान दिया, काले कर्मों का कोई नाम निशान नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी जो अपने पति से छुपा के रखना पड़े, करती है कर ही नहीं सकती, वो परा प्रकृति है, और दूसरी है महाकाली,
क्या?
कैसी महाकाली है? है तो परम पुरुष की ही रचना है, कहीं भी जाती है प्रकृति, लेकिन प्रकृष्ट कृति तो है लेकिन नीची टाइप की है। जो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां है ना शरीर में, उन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है, उन कर्मेंद्रियों की मुखिया है, उस परिवार की मुखिया है। क्या ये विराट शरीर रूपी पुरुष है ना, उसमें द्वैतवाद कहां से दिखाई देता है? है मुंडी में तो है ही नहीं, मुंडी तो एक ही, धड़ शुरू हुआ उसमें बाहें हैं, वो भी सर और धड़ दोनों से जुड़ी हुई है, अलग तो है नहीं, चाल भी अलग नहीं है, लेकिन कमर के नीचे से क्या होता है, दो तरफ द्वैतवाद शुरू हो जाता है। जहां से वो रजो प्रधानता शुरू होती है, वो रजो प्रधानता से कर्मों की शुरुआत होती है, कर्मों की दुनिया बन जाती है। सतयुग त्रेता है जहां कर्म करने की मनुष्यों को देवात्माओं को कोई जरूरत नहीं होती, सारा कर्म प्रकृति करती है। क्या? प्रकृति दासी बनकर करती है। क्या कहा? कैसी? प्रकृति दासी बनकर सारा कर्म करती है। प्रकृति दासी बन जाती है देवताओं की, और वो ही प्रकृति जब द्वैतवादी धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं 2500 वर्ष के बाद, जिस 2500 वर्ष की हिस्ट्री देवताओं की हेवनली गॉडफादर के पास ही रहती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता, परंतु हेवन की 2500 वर्ष की हिस्ट्री के बाद द्वैतवादी दैत्यों, चाहे वो मनुष्य रूप में है चाहे राक्षस रूप में हो, उनकी हिस्ट्री शुरू होती है 2500 साल। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। क्या बराबरी होगी या छोटी बड़ी होगी? बराबरी होगी। 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। माने जब ब्रह्मा की रात होती है तो जो धरणी रूपी पृथ्वी है वो ब्रह्मा को परछाया डाल देती है। क्या स्थूल दुनिया में भी क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर चमकता है, और पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी का परछाया पूरे चंद्रमा पर पड़ता है, तो अमावस्या भी रात होगा। ऐसे ही है ना, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष है? ये जो सूर्य है उसको कहा जाता है दक्षिण में, कृष्ण पक्ष माने दक्षिण में राक्षसों का वास माना जाता है। जो दुनिया का दक्षिणी हिस्सा है, जैसे दक्षिणी अमेरिका है, या भूमध्य सागर के नीचे का हिस्सा अफ्रीका है, या अरब देश है, मुसलमानी कंट्रीज हैं, और भारत तो दोनों तरफ रहता है। भारतवासी ऐसे हैं, जब भगवान की दुनिया चलती है, हेवन, हेवनली गॉडफादर की दुनिया, तो हेवन में भी रहते हैं। फिर जब द्वैतवादी धर्म पिताओं की दुनिया आती है, दो दो बातें शुरू हो जाती है, वो द्वैतवाद फैलाते हैं, वो कहते हैं नहीं आत्मा पात्मा कुछ नहीं, वो बाद की बात, रू हम बाद मानेंगे, पहले तो हम पंचभूतों की बनी हुई देह है, हम भौतिकवाद को मानेंगे, हम आत्मा आत्माओं को बाद में बात करेंगे। तो वो भौतिकवादी संज्ञा शुरू हो जाती है 2500 वर्ष की। उस 2500 वर्ष की दुनिया में फिर प्रकृति का राज्य चलता है, परंतु तो प्रकृति भी तो माता है ना, नीचे किस्म की नंबर 2 की माता तो है, लेकिन जो इंद्रियां हैं, जो 5 तत्व हैं, वो जड़त तो वही है। कैसे? उनमें बुद्धि नहीं है तो जड़त्वमयी प्रकृति, जो जड़त्वमयी इंद्रियों की माता है, जड़त्वमयी धर्म पिताओं की माता है, जो भावना वाले नहीं है। आत्मा में भावना होती है या जड़ शरीर में भावना होती है? है? आत्मा में भावना होती है, जड़ शरीर में तो कोई भावना नहीं। तो ये देहधारी धर्म पिताएं जो है, जो आत्मिक स्थिति को पकड़ते ही नहीं है, मान ही नहीं पाते, सब कह देते हैं रूह रूह रूह, वो ये भी समझते हैं कि रूह जो है वो आदमियों में होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें रूह होती है। बाकी और जो प्राणी हैं, जीव जंतु, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनमें रूह नहीं होती, इसलिए हम उनको काट पीट के खा सकते। ऐसी भावना रखते तो देखो, वो जानते ही नहीं है कि रूहों की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक देवात्माओं की कैटेगरी, एक मनुष्यात्माओं की कैटेगरी। ऐसी रूह है जो भगवान आता है तो सुधर जाती है, दैत्य से, दानव से, राक्षसी स्वभाव संस्कार को छोड़ करके देवता बन जाती है, ऐसी श्रेष्ठ रूह है। और दूसरी वो है जो सुधरती ही नहीं, क्या भले स्वर्ग में भी चली जाती है, क्या क्योंकि पहले भी स्वर्ग में थी पूर्व कल्प में, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें जो कमजोरी रह जाती है ईश्वर को कम पहचानने की, ज्ञान कम रह जाता है, जो ईश्वर से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की कमी के कारण वो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं स्वर्ग। क्या? जो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं, कमजोर मनुष्य आत्माएं सुधरी हुई बनी, वो द्वैतवादी द्वापर युग से आते आते धर्म पिताओं के चुंगल में फंस जाए। धर्म पिताओं की आत्माएं तो ब्रह्मलोक से आती हैं, आत्मलोक से सुधरी हुई आत्माएं हैं, क्या उनके स्वभाव भी अच्छे होते हैं, संस्कार भी अच्छे होते हैं। शुरू शुरुआत में तो दुनिया की हर चीज सात्विक ही होती है, इस दुनिया की, आत्मलोक की बात नहीं, आत्मलोक में तो सब सतो प्रधान, वो तो है ही सत प्रधान, या? लेकिन उस सत्य धाम को छोड़ करके जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि में प्रकृति का राज्य है। प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, 2 प्रकार की बताई ना, एक चैतन्य भावना वाली, चैतन्य ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करने वाली, दूसरी जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों की मुहिया है, भ्रष्ट इंद्रियों से जो कार्य करते हैं द्वैतवादी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, उनको विशेष महत्व देती है। तो वो आत्माएं जो कम कला वाली हैं, भगवान के शक्ति पर आने पर कम ज्ञान उठाती हैं, वो द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है। सुनी सुनाई बातों से उन भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्या भारतवासी, भारत का मतलब ही बताया, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहना। भगवान बाप सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तब भी वो ज्ञान ही शरीर ज्ञान में ही रत रहता है। क्या दुनिया में धंधे दोरी उसको रास ही नहीं आती, दुनियावी धंधे धोरी में बुद्धि नहीं लगती, और ईश्वरीय ज्ञान का धंधा जो ब्राह्मणों का पक्का धंधा है उस धंधे को ही 100% अपनाता है। इसीलिए वो 100% पक्का ब्राह्मण बनता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण चोटी। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। जैसे इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं, ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़। है कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है हिमवान। क्या हिमालय राज, यहां का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, उसकी ऊंची पे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। क्या एवरेस्ट? पूर्वीय सभ्यता वाली। क्या सूर्य कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। कोई भी देश में चले जाओ, दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, सब कहेंगे सूर्य कौन सी दिशा से निकला? पूर्व से। तो सबसे श्रेष्ठ दिशा कौन सी हुई? जहां से सूर्य हो, वो तो जड़ सूर्य है, चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। जैसे चैतन्य ज्ञान सितारे हैं, 9 लाख गाए हुए हैं आसमान के सितारे, ऐसे ही धरती के चैतन्य सितारे हैं हम बच्चे। क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सितारे जो ज्ञान की चमक मारते हैं। क्या कोई सितारे ऐसे होते हैं जो अपने ही चमक मारते हैं, टिम 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 चमकते रहते हैं। दूसरे सितारे हैं वो टिम टिम आते नहीं है, वो अपनी चमक नहीं है, लेकिन दूसरों से प्रकाश लेकर चमकते हैं, तो टिम टिम नहीं करते, चंद्रमा की तरह स्थिर जैसे दिखाई पड़ते। तो दो प्रकार के सितारे, उनमें जो टिम टिम करके चमकते रहते हैं वो बहुत थोड़े हैं या ज्यादा हैं? बताओ। दुनिया में उदाहरण जड़ सितारों का दिया जाता है, जड़ चीजों का। तो जो ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं वो दुनिया में थोड़े हैं या ज्यादा हैं? हैं? टिम टिम करके चमकने वाले, चमकते रहते हैं, ज्यादा हैं, जिनकी रोशनी यूं यूं होती रहती है। ये होते स्थिर रोशनी रहती है, ऐसे ही रहते चंद्रमा की तरह। चंद्रमा की रोशनी ऐसे ऐसे होती है सूर्य की तरह नहीं, थोड़े हैं। तो जो थोड़े हैं वो हैं बहुत थोड़े, उनको नक्षत्रों की गिनती में गिना जाता है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। ऐसे स्वयं प्रकाशित तो कोई नहीं होता, लेकिन 5000 वर्ष की सृष्टि में ऐसे दिखाई देता है कि वो स्वयं प्रकाशित। वास्तव में 5000 वर्ष की सृष्टि से पहले वो सितारे भी सूर्य से प्रकाश भरते। ये चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है, हेवनली गॉड फादर, वो खुद कलयुग के अंत में आकर के इस सृष्टि में ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। किसके द्वारा? स्वयं डायरेक्ट नहीं भरता है, इस मनुष्य शक्ति की जो बीज रूप आत्मा है, आदम एडम आदिदेव शंकर जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा रूपी सितारे हैं उनमें रोशनी ज्ञान की भर देता है। कोई में कम रोशनी, कोई में ज्यादा रोशनी, तो वो जो रोशनी ज्यादा भरने वाले सितारे हैं उनकी संख्या बताई। क्या टोटल जो चमकते हैं रात में चमकते हैं तो रोशनी देते कि नहीं है? चाहे टिमटिमा की जो रोशनी देते हैं, चाहे स्त्री हम रोशनी देते हैं, तो उस सितारों की संख्या भारतवर्ष में 9,00,000 मानी जाती है। कोई निगिने तो नहीं है जो बता देंगे 9,00,000, लेकिन ऋषियों मुनियों ने यह गणना की थी कि इस आसमान में दिन के सितारे, सूर्य की रोशनी वाले सितारे और रात में चंद्रमा की रोशनी में चमकने वाले सितारों की संख्या टोटल मिलाकर के कितने? 9,00,000। तो वो 9,00,000 सितारों में आधे ऐसे हैं जो सृष्टि का एक्यूरेट आरंभ जब होता है, हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के चला जाता है, तब जीवन धारण करते हैं पहले जन्म। जिनसे जीवन धारण करते हैं, जिनसे जन्म लेते हैं, गर्भ से ही जन्म लेते हैं शरीर से, तो उन माँ बाप की संख्या 4,500,000 और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं सतयुग की पहली पीढ़ी में उनकी संख्या भी 4,500,000। मान लो सतयुग की आदि की पहली सीढ़ी की आयु एवरेज 150 वर्ष है, तो 150 वर्ष में बच्चों की पैदाइश की संख्या 4,500,000 कितनी है? 4,500,000। और उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं वो सतयुग एक्यूरेट आरंभ होने से पहले ही सृष्टि पर मौजूद होते हैं। भले ही सृष्टि का विनाश हो जाता है लेकिन इतना योग बल धारण करते हैं कि उनके 5 तत्वों का जो शरीर है वो नष्ट नहीं होता। कुछ ऐसी सृष्टि में प्राकृतिक प्रक्रिया बनती है कि जब 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होती है इस सृष्टि पर और चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का बच्चा, पृथ्वी से निकला हुआ, वो पृथ्वी पर प्रशांत महासागर के गड्ढे में आकर के मिक्स हो जाता है, तो प्रशांत महासागर का जल और सारी दुनिया का सागर का जल इस तरह ऊंचा उठेगा या नहीं उठेगा? सारी दुनिया का जल स्तर ऊंचा उठता है और सारी शक्ति पर जलमयी हो जाती है। उसका एक कारण और कि पृथ्वी पर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां ठंडी बहुत है, बर्फ ही बर्फ, اور برف کی اتنی اونچائیاں بڑھ جاتی ہیں، برف کے اونچے اونچے پہاڑ بن جاتے ہیں، نارتھ پول پر بھی پرتبھی اور ساؤتھ پول پر بھی. جب مہا وناش میں ایٹم بمب پھٹتے ہیں، جسے شاستروں میں دکھایا گیا چترتھ وشو یدھ یادووں کا، روس اور امریکہ روپی یادو بہت شراب پیتے ہیں. کیا؟ کون سی شراب؟ وہ استھول شراب پیتے ہیں، لیکن جو بے حد کے کیا کہتے ہیں یادو، ودیشی آتمائیں، ودیشی دھرموں کی بیج یا آدھار مورت آتمائیں جو سنگم یگ میں ہوتی ہیں برہمنوں کے روپ میں، کم کلاؤں والی سمپن کلاؤں والی، وہ کون سی شراب پیتی ہے؟ اندیوں کے بیبیچار کی شراب پیتی ہے. تو وہ بیبیچاری جو بڑے بڑے دھناٹی ہوتے ہیں، دنیا کی طور سے دیکھیں تو حد کے حد کی دھن سمپتی کے دھناٹی، اور بے حد کی دشتی سے دیکھیں گیان کی دشتی سے تو کون سے دھناٹی، گیان دھن سمپتی کے دھناٹی. اور گیان تو ایک سے ہی آتا ہے، ایک ہی ستیہ ہے، گاڈ از ون، گاڈ از ٹروتھ. تو وہ آ کر کے جو ستیہ گیان دیتا ہے اس کے بڑے دھناٹے ہوتے ہیں، گیان ان میں بھرپور ہوتا ہے، خوب گیان سنان کرتے ہیں. کیا ایسے نہیں گندے سندے رہتے ہیں، جیسے بابا نے کہا دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، رائل لوگ ہوتے ہیں تو کتنی بار سنان کرتے ہیں، دو بار اسنان کرتے ہیں. تو ایسے ہی وہ سوچھتا تو خوب رکھتے ہیں باہر، اور بڑے دھناٹے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی اونچی اونچی اٹالکاؤں والے ہوتے ہیں. اٹالکا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں جانتے. کیا ہوتا ہے؟ اونچی اونچی بلڈنگیں، کیا سو سو ماں سے بھی اونچی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں. بیچارے بھارت واسی اتنی اونچی بلڈنگ نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ بڑی اونچی اونچی ودیشی. ان ودیشیوں میں جو مہا شکتی شالی گائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ کون کون؟ امریکہ اور رشیا. یہ چترتھ وشو یدھ میں اپنی بنائی ہوئی جو بڑی پرسدھ دنیا کی رچنا ہے ایٹم بم یا میسائل، جو شاستروں میں لکھا ہے کہ یادووں کے پیٹ میں سے لوہے کے موسل نکلے، شاستروں نے سمجھ لیا ہاں ایسے کوئی منشی ہوتے ہوں گے جن کے پیٹ میں سے موسل پیدا ہوتے ہوں گے. ہر پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لوہے کے موسل پیدا ہوتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں اندر شردھا میں آ کر کے. واسطو میں ہے بدھ روپی پیٹ کی بات، کیا جیسے اس پیٹ میں استھول بھوجن کھایا جاتا ہے، ایسے ہی یہ بدھ روپی پیٹ میں گیان کا اور یوگ کی خوراک کھائی جاتی ہے، گیان کا لکوڈ جل پیا جاتا ہے. لکوڈ ہوتا ہے نا، اونچی جگہ پہ ڈال دو کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا نیچے جائے گا؟ لکوڈ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا. تو یہ گیان جل جو ہے نا، وہ گیان جل بھی وہ بہت پیتے ہیں. یاد ہو بڑے گیانی ہوتے ہیں، بڑے بدھی کے منن چنتن منتھن شیل ہوتے ہیں، بدھی بہت چلتی ہے، بڑے تیکھے. کیا تم کوئی بات کہو چلنے نہیں دیں گے، پٹاخ سے کاٹ دیں گے، اتنے ہوشیار. ارے بھائی بدھی کی جو پربلتا ہے وہ تب ہی اچھی ہے جب भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड न हो। कैसी अच्छी है बुद्धि की प्रबलता, तब अच्छी है जब भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म याद न आता हो। भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है बुद्धि की प्रबलता, तो बुद्धि बेकार या कार की थी, बेकार थी, तो वो एटम बम बनाए लेते। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वृक्ष को यार हम बैठे हैं डाली पर, वो ही डाली काट देंगे तो हमारा क्या हो। तो एटम बम तो बना लेते हैं। सबसे जास्ती महाशक्ति दुनिया में कही जाती है एटम बम बनाने वालों की, मिसाइल्स बनाने वालों की, रूस और अमेरिका। ये रूस और अमेरिका रूपी प्रसिद्ध यादव हैं, जो तृतीय विश्व युद्ध जिसे महाभारी महाभारत युद्ध कहा जाता है। क्या अमेरिका युद्ध नहीं, रसिया युद्ध नहीं कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया युद्ध नहीं कहा जाता, अरब युद्ध नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता, महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये भारत से कनेक्टेड है, जिस भारत में भगवान आता है, इसमें आता है। एक तो होता है जड़ भारत, जड़ जमीन है, उसको भारतवासी कहते हैं भारत माता। लेकिन उन भारतवासियों को आज पता ही नहीं है कि वो भारत माता कोई विधवा थोड़ी होगी जो माता तुम कहते हो। माता है तुम्हारी तो तुम भारतवासी हो, माता की गोद में खेलने वाले बच्चे हो, पेट में पलने वाले बच्चे हो, भारतवासी हो। कहां बसे हो, माता है, भारत माता के पेट में बसे हो, गोद में बसे हो, सुख ले रहे। लेकिन पिता भी तो होगा कि नहीं होगा नहीं समझते। बड़े बड़े मजमे लगाते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, मुख से बोलते जय माता दी। क्या बोलेंगे, जय माता दी। अरे भैया, इतनी इतनी जय माता दी, जय माता दी बोल रहे हो, तुम्हारा पिता कहां चला गया, उसे का भी तो नाम एक बार दे दिया करो, उसको गायब कर दो। ऐसे है देवी के पुजारी, क्यों ऐसे देवी की पुजारी क्यों बन गए हैं? इसलिए बन गए कि जो अपरा प्रकृति है, दूसरी माता है नीची प्रकृति की, वो माता सारे सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करती है। कब, कलयुग के अंत, सत्युग त्रेता में नहीं, तो शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती होगी कि नहीं, कि ब्रॉड ड्रामा में ही कंट्रोल करेंगे, शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती, शूटिंग पीरियड में आरंभ में कंट्रोल नहीं करती है। क्या जब सत्य प्रधान शूटिंग पीरियड में स्वर्णिम संगमी भी दुनिया बनती है, सत्य प्रधान सत्य सामान्य जहां रामकृष्ण की आत्माओं का आधिपत्य होता है, वहां नहीं करती है। फिर जब द्वैतवादी इन धर्म पिताओं का फोर्स बढ़ने लगता है, तो ये अपरा प्रकृति नीची किस्म की माता सारी दुनिया को कलयुग के अंत में आते आते 500-700 करोड़ को भी कंट्रोल कर लेती। इसलिए सिख लोग आज भी गाते हैं राज करेगा खालसा, वो खालिस प्रवृत्ति वाली है। क्या प्रतिष्ठ रचना है तो किस लिए, इसलिए है खालिस माने पवित्र, उसकी बुद्धि नीचे टाइप की तो है लेकिन इतनी पवित्र है कि वो भगवान हेवनली गॉड फादर शिव निराकार जिस साकार तन आदम में आता है अर्जुन में, गीता में दिखाते हैं अर्जुन के रथ में आया, तो शरीर रूपी रथ में वो निराकार भगवान जिसमें आता है उस रथ को याद करने में परफेक्ट,
क्या
उस रथ को वो माता जितना याद कर लेती है उतना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा उतना उस रथ को याद नहीं कर।
कोई कहेगा है ऐसा क्या कारण?
कारण है, कारण है कि वो अपरा प्रकृति जिसे महाकाली कहा जाता है तामसी रूप में, और सात्विक रूप जब उसका होता है तो उसे कहते हैं दुर्गा, क्या दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा,
जिसको ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई जाती
है। क्या इस सृष्टि में जितने भी देहधारी माताएं हैं,
क्या
जितने भी देहधारी पुरुष हैं, वो सब उसकी भुजाएं बनते हैं, चाहे लेफ्ट साइड की भुजाएं बने चाहे राइट साइड की भुजाएं बने, उसके सहयोगी सारी दुनिया बन जाती है। क्या माता के सहयोगी बन जाते हैं।
बाप अकेला रह जाता है।
क्या इसलिए सब बाप को भूले हुए हैं कलयुग के अंत में, सब बोलते हैं जय माता दी जय माता दी, बड़े बड़े मेले लगा के। सबसे बड़ा मेला लगता है किसका है? माता का मेला बहुत बड़ा लगता है और बार बार लगते हैं, लेकिन जो विश्व पिता है आदम आदिदेव आदिनाथ विश्वनाथ शंकर, उसमें भी तो एक बार शिव आता है ना सुप्रीम सोल, तो वो आकर के उसको विश्व का मालिक बनाता है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। उसका नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहें, कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती से शासन नहीं करना है, जैसे दुर्योधन तो शासन आज के पुरुष लोग करते हैं स्त्रियों के ऊपर, जबरियन अधिकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं है? तो वो दुर्योधन दुशासन नहीं बनता, लेकिन आज की ऐसी झूठी दुनिया है कि वो परम पुरुष शिव आत्माओं के बीच में, और जिस मनुष्य पुरुषों के बीच स्त्रियों मनुष्यों के बीच मनुष्य आत्माओं के बीच में जब आता है जिस मनुष्य तन में, तो आज की दुनिया उस मनुष्य तनधारी को भी दुर्योधन दुशासन साबित कर। क्या जैसी दृष्टि वैसी समझते हैं कि जैसे हम दुर्योधन बनते हैं कन्याओं माताओं के प्रति, क्या ऐसे ये भी बनता हूं दुर्योधन मन दुष्ट युद्ध करने वाला। कैसा दुष्ट युद्ध है? प्यार का युद्ध होता है या कर्मेंद्रियों से मार का युद्ध होता है? प्यार का युद्ध तो होता ही, प्यार का युद्ध दुख देता है, दुख थोड़े ही देता है, जो कर्म इंद्रियों का मार का दुख है वो दुख देता है। कर्म इंद्रियों को चलाने वाली जो मुख्य इंद्रिय है मन, वो भी संकल्पों से दुख देता है, लेकिन परमपिता आत्माओं का पिता जिसमें प्रवेश करता है वो दुख कैसे देगा? वो तो रथ में प्रवेश करता है, रथ को कंट्रोल करता है, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को बुद्धि की लगाम देकर के कंट्रोल करता है। वो रथ कोई के ऊपर देह की इंद्रियों का बाहुबल कैसे चलाएगा? चला ही नहीं सकता। चलाना भी चाहे तो शिव उसमें प्रवेश है, क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। इस बात को तो दुनिया जानती ही नहीं, भारतवासी ही नहीं जानते, भारत की गवर्नमेंट ही नहीं जानती। भारत की गवर्नमेंट में पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी, आज तो इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने गीता को भी उड़ा दिया। दुनिया के सब धर्म पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि धर्म को मानते हैं, धर्म पिता को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, क्योंकि रिलीजन इस बाइट कहा जाता है। और ये भारत की गवर्नमेंट ऐसी है, न धर्म पिता को जानती है न मानती है, न उसकी मत पर चलती। कि हमारा भारत का जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो कौन है? मुसलमान जानते हैं अल्लाह अब्बल दीन, क्या दूसरे धर्म वाले जानते हैं? भले कृष्ण के रूप में कहते हैं, वो नहीं जानते। कृष्ण को भी जन्म देने वाला कोई तो बाप होगा, बच्चा थोड़े ही अपने आप लॉर्ड बन जाता है। तो वो धर्म पिता शिव बाप इस शक्ति पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता। दुह माने खराब आचरण करने वाला, और खराब आचरण भ्रष्ट इंद्रियों का होता है या श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं आचरण करके संतान पैदा करती है, भ्रष्ट इंद्रियों से जो द्वैतवादी धर्म पिताएं संतान पैदा करना सिखाते हैं, सृष्टि चलाना सिखाते हैं। ये सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है, दानवों की सृष्टि है, दैत्यों की सृष्टि है, राक्षसी सृष्टि है, उनको कहते हैं दुखदाई। इस 2500 वर्ष की सृष्टि में इन विदेशियों ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए हैं, और बाहुबल के आक्रमण किए हैं कि दूसरे प्रकार का अहिंसा का आक्रमण किया है। ज्ञान की बातें सुनाई है क्या? ज्ञान का युद्ध किया है क्या? नहीं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री है इस भारत की, ये देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री है, प्रैक्टिकल हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को भी भूल चुके हैं, क्योंकि 2500 वर्ष में अनेक जन्म लिए हैं आत्माओं ने, इसलिए इस हिस्ट्री में भी बड़ी गड़बड़ है। सच्ची हिस्ट्री इस हिंसक दुनिया की 2500 वर्ष की, और अहिंसक दुनिया हैविन की, जो हेवनली गॉड फादर बनाता है, दोनों की हिस्ट्री वो हेवनली गॉड फादर ही सच्ची आकर के बताता है, तरीका बताता है। जैसे अलजबरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, है? ये प्लस ये बराबर ये। तो ऐसे सिद्धांत बता देता है ज्ञान के। जिन ज्ञान के सिद्धांतों को लगाते जाओ, जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री खुद दी जाए। हर आत्मा रूपी पार्टधारी की हिस्ट्री खुलेगी, क्योंकि ये जो आत्मा है, ये जन्म जन्मांतर इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर भांति भांति के चोले रूपी शरीर धारण करके पार्ट बजाती रही है। पार्टधारी है ज्योति बिंदु आत्मा। इस ज्योति बिंदु आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रॉड इस दुनिया में 5000 वर्ष का पार्ट है। आधा टाइम सुख का पार्ट जो भगवान स्थापन करते हैं, आधा टाइम दुख का पार्ट, थोड़ा सा सुख नाम मात्र क्षण भंग, बाकी दुख ही दुख। तो देखो ये मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया जाता है जिन्हें नर कहते हैं, नर से नरक बनता है। नरक कौन बनाता है? नर बनाता है, है? नर क्यों नाम रखा? गुस्से में आता है तो नर नर आता है, नर 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 बहुत नर नर आता है, आंखें लाल लाल करके नर नर आता है, बहुत गुस्सा दिखाता है। और जिसमें क्रोध होगा, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ब्रह्मा मुख से, उसमें क्रोध जरूर होगा, काम भी जरूर होगा। काम विकार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कामियों क्रोधियों लोभियों मोहियों अहंकारियों की दुनिया है 2500 वर्ष की हिस्ट्री, मानवीय हिस्ट्री है। अभी भगवान बाप आया हुआ है सुख की सृष्टि बनाने के लिए, जिस सुख की सृष्टि में रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं होगा, हिंसा का नाम निशान नहीं होगा, क्या बाहुबल की कोई भी हिंसा नहीं करेगा इंद्रियों से। तो बताया कि बाप के बने हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, पिछाड़ी में साथ में ले जाएगा शांति धाम, और शांति धाम से नंबरवार इस सुखधाम की सृष्टि में भेज देगा। ले जाऊंगा कहां? पहले शांति धाम ले जाऊंगा, फिर कहां ले जाऊंगा? सुखधाम में ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? निराकार ले जाएगा, निराकारी धाम में रहने वाला ले जाएगा, निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव ले जाएगा, सुप्रीम सोल ले जाएगा, या सुप्रीम सोल जिस साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, डायरेक्ट रथ में डायरेक्ट आकर के पढ़ाता है, बाप के रूप में जन्म लेता है ज्ञान का, बाप के रूप में टीचर बनता है साकार मनुष्य तन के द्वारा, उसी साकार मनुष्य तन के द्वारा सदगुरु बनता है, सदगति देता है। सदगति शरीर से मिलेगी बिना शरीर के, शरीर साकार से मिलेगी। तो वो तीनों ही रूप एक तन के द्वारा डायरेक्ट धारण करता है। इतनी सीधी सीधी बातें हैं जो बच्चों को बाप अच्छी तरह से समझाता है। माया की मत पर है, यानी पर मत पर स्व की मत है या माया की मत है? स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्व के धर्म में मर जाना अच्छा है, गीता में लिखा है पर धर्मो भयावह। ये पर धर्म क्या है? ये प्रकृति का धर्म है, जिस प्रकृति को माया देती कंट्रोल कर लेती, अपनी मुट्ठी में दबा के रखती है, हाथ मिला लेती है, दिखावा करती है हाथ मिलाने का। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाने का दिखावा करती है, लेकिन पूरा ही कंट्रोल में लेकर के चलती है माता को। कौन सी माता को? अपरा। और अपरा प्रकृति इतनी चालाक इतनी चंडैल, शास्त्रों में इसको नाम दिया है दिति, या खंडित फटी हुई, क्या विविचार के आधार पर खंडित, ऐसी खंडित माता के राज्य में सारी दुनिया दुखी होती है। बा पा करके परा प्रकृति के द्वारा परे ते परे रहने वाली जो सृष्टि है स्वर्ग और शांति धाम वहां का वासी बनाता है। तो बाप कहते हैं सब किसी मत पर चल न चलो है परमत मत पर न चलो, परमत है माया की मत है, और माया को माया ने जिस परमाने प्रकृति को कंट्रोल कर रखा है उसकी भी मत। तो माया की मत है माना प्रकृति की भी मत है, उस पर न चलो क्योंकि परमत माना भूतों की मत। तो प्रकृति है ना प्रकृष्ट कृति, क्या ऐसी कृति है प्रकृष्ट कृति, सारी ताकत लगा दी, सारी ताकत माने सिर्फ आत्मा की ताकत लगाई है या आत्मा ने शरीर में प्रवेश करके शरीर की भी एड़ी चोटी की पावर लगाई है, है? आत्मा की भी पावर लगी है और शरीर की भी एड़ी से लेके चोटी तक की पावर लगी। जैसे दुनिया में पुरुष होते हैं ना, इस भ्रष्ट दुनिया में नारकीय दुनिया में तो संतान पैदा करते हैं तो पूरी ही ताकत लगाते हैं, पूरे शरीर की इंद्रियों की ताकत लगाते हैं कि कुछ ढीला ढीला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते पूरी ही ताकत। तो ये एड़ी चोटी की पावर से जो ये माया बेटी पैदा हुई ना, ये बाप की बड़ी बेटी है। जैसे बाप सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है, मनुष्य शक्ति का बाप, ऐसे ही ये माया है, ये जड़त्व बुद्धि वाली भ्रष्ट इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली प्रकृति माता है नीचे प्रकार की। तो बोला इन भूतों की मत पर न चलो। पांच भूत हैं, कौन से प्रकृति के पांच भूत हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये पृथ्वी में व्याप्त है, क्या मिट्टी में, मिट्टी माने पृथ्वी, मिट्टी में हवा भी है, मिट्टी में आग भी है, मिट्टी में आकाश वैक्यूम भी है, जल भी है, नमी जरूर है। तो ये पृथ्वी माता ये पांच तत्वों का संघात है। इस सृष्टि में जब आत्माएं आती हैं तो पांच तत्वों के संघात में आत्मलोक से आने वाली आत्माएं बंध जाती। तो है? तो प्रश्न ये है कि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता है। ज्ञान इंद्रियों की भावना वाली है ना, श्रेष्ठ माता है। शास्त्र में उसका नाम दिया है अदिति, माने कभी भी खंडित नहीं होती, काई कोई राक्षस उसकी चीरफाड़ नहीं कर सकता इंद्रियों से। तो ऐसा माता का पार्ट बजाने वाली वो शास्त्रों में पार्वती कही, क्या नाम दिया पार्वती। जैसे धनवान होता है धन होता है, धनवती होती है तो स्थूल धन वाली कही जाती है, ऐसे ये है पार्वती, माने सारे संसार को पार लगाने वाली माता। जो जड़त्वमयी प्रकृति है उसको भी पार लगा करके कहां ले जाती है, सुखधाम में, स्वर्ग में ले जाती है, जिस स्वर्ग में पहली पीढ़ी के जो बच्चे हैं 16 कला संपूर्ण हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उनकी वो दासी बन, उसकी उनकी अकेले की नहीं, सत्य बत्रेता रूपी स्वर्ग में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबकी वो दासी है। प्रकृति राशि, उनका शास्त्रों में नाम दिया है वृंदा, तुलसी के रूप में पूजी जाती है। तो तुलसी के भी दो रूप हैं, क्या? काली तुलसी और गोरी तुलसी। क्या? काली तुलसी वो है जो जंगलों में पैदा होती है। आज की दुनिया कांटों का जंगल है ना, कांटों के जंगल में ही रहती है। बाप आते हैं तो बाप जो परिवार बनाते हैं ब्राह्मणों का, उसमें नहीं रहती और टिक ही नहीं पाती। अगर आएगी भी ना थोड़े समय के लिए, तो जैसे यज्ञ के आदि में मिसाल दिया है, एक भंगिनिया आती थी, कितने दिन टिकी? बाबा के आते ही गले पड़ जाती थी, छाती से लिपट जाती। फिर क्या हुआ? किसकी बात हो रही? बंगीन की बात हो रही, जो यज्ञ के आदि में आती थी। वो लोकलाज की परवाह नहीं करती थी। क्या? कि कोई क्या कहेगा, सबके सामने मैं कैसे क्या कर रही हूं? नहीं। तो वो है बीज। क्या? अपरा प्रकृति का मूल बीज और इसकी आधारभूत हो गई वो माता, जो बड़ा रूप धारण करती है। ओ अठर, अठारह का बहुत महत्व है। अठारह अध्याय की गीता, अठारह महारथी महाभारत की, अठारह पुराण,
अठारह अक्षौणी,
अठारह अक्षौणी, भारी माता, वाह वाह हरी माता। आज की वाणी सबको समझ में आएगी, शास्त्र वालों को जरूर समझ में आएगी, कुछ बुलाहट होगी उनके मन में। क्या करूं, मैदान में आऊं कि ना आऊं? आऊंगा तो भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला कहां जाऊंगा है? जैसे बवाली बाबा, भाई बवाली बाबा जैसा तो नहीं बनूंगा, ऐसे सोच में पड़ जाएंगे। कुछ बोलना करना है, कुछ पूछना करना है, माता है तो कुछ पूछती नहीं, कहती है सत्य वचन महाराज। क्या ये तो परम भक्त हो गई? अरे दरवाजे के बाहर तो मैं किसने निकाल के खड़ा कर दिया, अंदर आ जाओ। बाबा तो आसमा देखते हैं, देख। अरे बाहर ना हो गया, कुछ पूछना करना है। अरे सारी वाणी समझ में आ गई, इतना संपूर्ण बुद्धि बन गया, नहीं आई समझ में?
समझ में आया, हमको निद्राजीत बनना है। बहुत नींद आती है, कितनी कोशिश करने पर भी नींद आती है।
नहीं हार ये न हिम्मत, विसार ये न राम। क्या नारा है?
हारिए ना हिम्मत,
विसारिए ना राम, राम को भूलिए नहीं, भगवान को मत भूलो, वो सहयोग करने आया है, हर बात में सहयोग है। क्या? निद्रा से लड़ाई लड़ने में भी सहयोग। बोला है जो ज्ञानी तो आत्माएं होती है ना, ज्ञान में रस लेने वाली, उनको माया जानती है कि इन ज्ञानियों से तो मैं नहीं जीत पाऊंगी ना।
पांच विकारों को कंट्रोल करने वाले होते हैं ज्ञानी, ज्ञानाग्नि से विकारों को भस्म कर देते हैं क्या। लेकिन छठा विकार जो है ना, आलस्य और निद्रा, इसको नहीं मान पाता। तो किनारे पर पहुंचेंगे हो काय के लिए, इतना होल्ड ऑल हो रहा है। क्या कहा? अच्छा, दुनिया में कौन से धर्म के लोग हैं जो बहुत सोते हैं?
क्रिश्चियन लोग,
किसी का क्रिश्चियन के बाद मुसलमान आते हैं, सन्यासी आते हैं। ये थोड़ी बहुत चालाक धीरे धीरे बोल रहा है, उसमें भर ना जाए। अरे सच्चाई है तो बोल धरा दे।
सिख धर्म के लिए बोलते हैं ना,
सिख धर्म की आत्मा ज्यादा सोती है,
मतलब वो भगवान को पहचानते नहीं है, सोते ही रहते हैं। 12 बजते हैं तब जा करके।
12 बजे तो सूर्य ऊपर से चमकता है जोर से, तब तो जग जाते हैं ना। लेकिन ऐसे भी हैं कि ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आ गया, 80 साल हो गए और वो अपनी चलाए रहे। देख भगवान का बच्चा है तो कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है क्या है?
नास्तिक गवर्नमेंट
है, धर्म है ही नहीं, वास्तव में धारणा करता ही नहीं, अपनी चलाता है। तो बुद्धि में बड़ा तीखा समझता है, एटम बम बनाए ना, सबसे ज्यादा घमंड कौन सा है?
अहंकार।
किस बात का अहंकार? क्या किया घमंड जो तुम अहंकार दिखा रहे? कुछ किया होगा ना, क्या किया?
एटम बम बनाए।
ऐसी चीज बनाई है कि वो अगर ध्यान देता, कल्याणकारी बन करके ध्यान देता, तो इस एटमिक शक्ति से बड़े बड़े कारखाने चला सकता था। इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, फिर मेरे को कौन पूछेगा? नहीं, मैं सारी दुनिया को भस्म कर दूंगा, दबदबा बनाए रखो। दबदबा बनाने में बड़ा होशियार भगवान आया हुआ है, वो ज्ञान है। हमारे अहंकार के ज्ञान को धारण ही नहीं करता, देह के धंधों में ज्यादा लगा रहता है। अब भगवान कहते हैं मैं चतुर्वर्ण्यम रचनम, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैं चार वर्णों की रचना रच रहा हूं। कौन कौन से? एक ब्राह्मण जन जिनका धंधा क्या है?
ज्ञान लेना,
ज्ञान लेना,
ज्ञान देना,
ज्ञान देना, ज्ञान युक्त कर्म करना, ईश्वरीय सेवा करना, ऐसा कर्म करना जिससे ईश्वरीय संसार में सेवा हो, कोई देहधारी से कोई लगाव नहीं, उससे संसार का कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा,
होगा ही, अपना भी होगा और विश्व का भी होगा।
देह का कल्याण, देह का प्यार करने, देह की आसक्ति करने से देहधारी बुद्धि में आता रहे याद, उससे अपना कल्याण होगा है?
नहीं होगा।
तो ये भी जानते हैं कि हमारा कल्याण नहीं होता इससे, फिर भी ये प्रमाद ऐसा चढ़ा हुआ है, ये अलबेलापन ऐसा चढ़ा हुआ, उस बात पर गहराई से ध्यान नहीं देते, पकड़ते ही नहीं उस बात को कि ये बड़ा घातक चीज है। हालांकि वो तो दुनिया के बाहर के हैं वैज्ञानिक, जो क्रिश्चियन धर्म के नास्तिक हैं। क्रिश्चियन धर्म में दो वर्ग हैं, एक आस्तिक
और एक नास्तिक।
एक नास्तिक, एक है क्राइस्ट को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं, एक है कुछ भी नहीं जानते। तो वो बहुत अहंकारी रशियंस, जिनकी औलाद ये चीन बने हुए, चाइना वाले। तो क्या गड़बड़ी है? सूर्य निकल गया, सूर्य के प्रकाश से जब तीखा प्रकाश चपकता है, जो दुनिया में मध्य कलयुग में जो धर्म पिता आता है, उसके फॉलोअर्स भी जगने लगते हैं, सिख लोग भी जगने लगते। बड़ी ताकत लगा रहा हूं कहता है, सारे कर्म मैंने कर लिए, सारी दवाइयां कर ली, मेरे बस की बात नहीं। अरे भाई होल्ड ऑन मत हो, तुम्हें किसका तुमको बच्चा किसने बनाया है?
भगवान ने।
ऊंचते ऊंच बाप ने अपना बच्चा बनाया है तो स्वर्ग में ले जाएगा कि नहीं? मार पीट के ले जाएगा, चिंता न करो। लेकिन मार पीट आने के चक्कर में हम क्यों आए हैं? हम तो बच्चा बने हैं तो हम उसकी बात को मानेंगे ना। क्या बात मानेंगे? कि हमें ब्राह्मण बनना है। क्या बनना है?
ब्राह्मण।
ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। क्या बनेंगे?
ब्राह्मण सो देवता बनेंगे।
सो देवता कौन सी कुरी की ब्राह्मण?
अव्वल
अव्वल कुरी की ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। उस कुरी में पहुंचना है, उस कुरी में सब धर्मों के बीज होंगे। क्या? सबके बीज, सारे संसार के बीज होंगे। तो स्वर्णिम स्वर्ग में आएंगे, भगवान के बनाएंगे स्वर्ग में, संगम युग में स्वर्णिम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे?
जाएंगे।
जाएंगे, ध्रुव निश्चित है। ये नीत कुंभकर्ण रावण का भाई है। इसका भाई है
रावण का?
रावण का भाई। इसका भी पार्ट है हमारे ऊपर सवार होने का। क्या है? और ये कुंभकर्ण जैसी आत्माएं दुनिया में हैं, या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं, इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, क्षत्रिय धर्म की आत्माएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, है? या जो सबके बीज हैं, संगम युग में ही विशेष पार्ट बजाने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। क्या? विश्व पिता विश्व का मालिक तो यथा राजा
तथा प्रजा।
तथा प्रजा सत्ता बच्चों के हाथ में होती है। सत्ताधारी ताजधारी बच्चे बनते हैं, जिम्मेवारी दुनिया की संभालने के ताजधारी या बाप ताज दिखाया जाता है, है?
बच्चे
चिंता क्यों करते हो? ऐसी ऐसी होल्ड ऑन बात कह देते, हमने सब कर्म कर लिए, सारी दवाई कर ली, अब हमारे बस का रोग, हम हताश हो गए। अभी नहीं कहना कभी। क्या क्या मंत्र दिया? अरे अभी मंत्र दिया है?
मनमना भाव।
अरे मनमना वो तो बहुत बड़ा मंत्र है, सबके लिए है ही है, तुम्हारे लिए भी है, सारी दुनिया के लिए है। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अभी तुमको अभी एक मंत्र दिया,
हारिए ना हिम्मत।
हारिए ना हिम्मत, देखा ना, ये पहले पकड़ लेता है। तुम तो हिम्मत जैसे हार ही गया, कुछ से किसी बात से कुछ नहीं होगा ऐसे। कहता मैं तो अशोक सुंदरी हूं, मैं तो कन्या हूं, ये तो कंडुआ है, ज्यादा पावरफुल होगा ही होगा ऐसे है। अशोक सुंदरी तो शरीर का नाम है, लेकिन अरे अशोक सुंदरी भी कोई कम थोड़ी है, काशी नगरी का नाम है अशोक सुंदरी। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बच्चियों को आज की दुनिया में। दुनिया वाले लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं आज की दुनिया में, शिव बाबा के
बच्चियों को
कन्याओं को ज्यादा प्यार करते हैं। तो खुशी में नहीं रहता है, मुझे रोता रहता है, मुझे अशोक सुंदरी बना दिया, मुझे लड़की बना दिया, मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी, कुछ नहीं है ऐसा। अभी क्या मंत्र दिया फिर भूल गया, एकदम भूल डाल हो गया।
हिम्मत नहीं हारना है।
अरे मंत्र पूरा बताओ, हिम्मत नहीं हारना है, इतने से काम चले, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा।
हारिए ना हिम्मत।
हाँ, बिसारिए माने भूलिए नहीं, बिसारिए माने भूलना नहीं। किसको नहीं भूलना?
बाप को।
हाँ, राम संगम युग में जो राम का पार्ट है, साकार पार्ट है भगवान का, उसको भूलना नहीं, सब कुछ देने वाला है वो। हाँ ये नहीं हिम्मत विसार नहीं, कितना बढ़िया मंत्र है। अरे ये कुंभकर्ण तो क्या कोई चीज नहीं, रावण भी मारा जा सकता है इससे, रसों से खप कर दो। तो तुम इतने होल डाल के हो रहे हो, अब नहीं जीत पाऊंगा, मैंने सब कर्म करके देख लिए, अब नहीं कहना आज है। क्या मंत्र दिया रिपीट करो फिर से।
हारिए ना हिम्मत।
अरे हिंदी में बोल दो, ये साधारण हिंदी में बोल दो। भूलिए ना रम, विसारिए माने भूल, फिर से बोलो।
हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम,
विसारिए ना राम, विसारिए ना याद आए तो बोलिए सही।
कौन सा देश? भारत देश। भारत जी दो प्रकार का हो गया, एक जड़ भारत जमीन और एक वो भारत जो ज्ञान की रोशनी से रोशनी फैलाता रहता है इस संसार में हीरो पाठधारी के रूप में। वो भारत ज्ञान की रोशनी में ही रहता रहता है, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी, वाचा से भी, दृष्टि से भी, वृत्ति से भी। वो किसी के सामने सूर्यवंशी असल सूर्यवंशी झुकते नहीं है, मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन काम पूरा करते छोड़ेंगे। देयम वा पातयामे कार्यम वा साधयामे, ऐसी ही शूटिंग संगम युग में करते हैं। यज्ञ के आदमी भी बल शरीर छूट गया हो तो भी आत्मा में ये भाव भरा रहता है, संस्कार भरा रहता है, अगला जन्म लेकर के फिर युद्ध करेंगे धर्म युद्ध और जीत पाकर रहेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो अभी बीज रूप आत्माओं का मेघनाद नहीं मरा है। मेघ माने बादल, नाद माने जोर से बादल की तरह गड़गड़ाने वाला, वो आधार मूर्त आत्माओं का मेघनाद मरा है। कौन? जो आज के भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह बड़ा ब्रह्मा कुमारियों में भाषण करता माना जाता था।
अच्छा जगदीश भाई,
बीज रूप आत्माओं का अभी भी नहीं मरा है।
बीज रूप में कौन है बाबा?
प्रत्यक्ष हो जाएगा, जैसे वहां प्रत्यक्ष हो गया यहां भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, कुछ गुप्त नहीं रहेगा। बाबा ने कहा एक एक चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी संगम को, चेहरे तैयार हो रहे हैं, कौन राक्षस बनने वाला है, कौन देवता बनना है, कौन दानव बनने वाला है, कौन देवता बनने वाला है। देवताओं के भी चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, देवियों के भी हो रहे हैं, राक्षसों के भी हो रहे हैं, राक्षसियों के भी हो रहे हैं, सुपन खा पूतनों के भी, सब आत्मरूपी पार्ट धारियों के पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर ये शरीर छोड़ेंगे दुनिया में, अपने अपने पार्ट को अच्छी तरह पहचान लेंगे।